हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत की प्रार्थनाओं के अंतर्गत चौथे स्कंद में दक्ष यज्ञ में भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हुए आज कर्म कांड के वेदों का विभाग प्रार्थना कर रहा है। ब्रह्मा वाच: नमस्ते शरीत सत्वाय धर्म आदिनाम च सूतये निर्गुणाय च यत काष्ठाम नाहम वेदा परे अपि च। नमस्ते, नमस्कार करते हैं भगवान आपको। ये वेद कह रहे हैं शरीत सत्वाय, शरीत आश्रित, जिस भगवान का सत्व गुण ने शरण लिया है, इसका मतलब भगवान विष्णु जो सत्व गुण के अधिपति है, ब्रह्मा जी रजोगुण के और शंकर जी तमोगुण के, तो ये भगवान विष्णु को शरित का मतलब आश्रित, सत्वाय का मतलब सत्व, सत्व गुण ने जिसका आश्रय लिया है। बोला सत्व गुण में क्या होता है? धर्म आदि नाम। सत्व गुण में धर्म होता है, सत्व गुण में तपस्या होती है, सत्व गुण में ज्ञान होता है, तो ये सत्व गुण के गुण है। ये च सूतय, सूतय का मतलब जैसे पुत्र है, ये सत्वगुण का संतान है, सत्वगुण से उत्पन्न होता है। जो सत्वगुण में होगा वो धार्मिक होगा, जो सत्वगुण में होगा वो ज्ञान के में रुचि रखेगा, जो सत्वगुण में होगा वो तपस्या करेगा। तो भगवान कहते देखो मैं भी सत्वगुण में हूं क्या? बोलो नहीं, निर्गुणाय च, परंतु आप तो तीन गुणों से परे हो। यत काष्टम, आप तो इस गुणों की सीमा से बहुत परे हो। ना अहम वेद, हम नहीं आपको जानते। अपरे अपिच, और दूसरे वेद जो हैं ज्ञान वाला कांड, वो भी आपको नहीं जानता है, आप इससे परे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मूर्तिमान वेद प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं भगवान, आप सत्वगुण आपका शरण लेता है, और इसी के कारण सत्वगुण में ही धर्म है, तपस्या है, सात्विकता है, और ये सब गुण है, परंतु आप इन सब गुणों से ऊपर हैं और आपकी स्थिति हम नहीं जानते। चक्रवर्ती पाद कहते हैं हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हे सत्वगुण का, सत्वगुण जिनके शरण में है उनको प्रणाम करते हैं, जो धर्म का, ज्ञान का, वैराग्य का, ऐश्वर्य का आधार है सत्वगुण, परंतु जो स्वयं तीनों गुणों से परे है, जिनको न हम जानते हैं और न कोई ऑल वेद जानते हैं। तो यहां ब्रह्म का अर्थ है वेद, और कौन सा वेद? बोले जो कर्म कांड का वेदों का विभाग है, वो मूर्तिमान रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ यज्ञ ही हो रहा है, तो यज्ञ में जो वेद होता है उसका वर्णन है। अमर कोश का मतलब है डिक्शनरी, वैदिक डिक्शनरी में ब्रह्म का अर्थ वेद है, ब्रह्म का अर्थ सत्य भी है, और ब्रह्म का अर्थ तपस्या भी है, तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वेद। सत्वगुण में, सत्वगुण भगवान विष्णु का शरण लेता है, और वो ही धर्म, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य आदि का आधार है, और इनके द्वारा ही भगवान का शरण लेने का साधन होता है। ये वेद कह रहे हैं मैं कर्म कांड का वेद का विभाग मूर्तिमान, और ज्ञान कांड के वेद पे विभाग, ये आपके विषय में सत्य को पूर्ण रूप से नहीं जानते। तो फिर दूसरों की क्या बात करें जो यहां सब बैठे हैं, ये जो कर्मी और ये ज्ञानी बैठे हैं, ये बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, और ये जो यज्ञ आदि करते हैं, ये आपको कहाँ से जानेंगे? ये कर्म करते हैं हमको पढ़कर, ये ज्ञान इनको आता है हमको, हम हमारा आश्रय लेकर। तो जब हम जिनके, जो हम ही आपको नहीं जानते हैं, तो हमको पढ़ के आपको वो कैसे जानेंगे? ये वेद कह रहे हैं। तो ये जो कर्मी और ज्ञानी उस सभा में बैठे हैं, उनके विषय में कह रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक जगत में ये त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये तीनों गुणों के अधिपति हैं, और यहां जो बताया है सतोगुण जिसका अधिपति भगवान विष्णु है, वो सतोगुण धर्म ज्ञान तपस्या वैराग्य और ऐश्वर्य ये सब सतोगुण में होते हैं। और ये जब सतोगुण भगवान का शरण लेता है, लोग सतोगुण का शरण लेते हैं, तो वास्तव में शांति होती है, समृद्धि होती है, ज्ञान होता है, लोग धार्मिक होते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रचार का दृष्टिकोण था कि लोगों को सतोगुण में लाया जाए। प्रायः लोग रजो और तमोगुण में ज्यादा प्रभावित हैं, सतोगुण की तरफ आ जाएं, उठना सतोगुण हो, सोना खाना सब कुछ सात्विक हो, तो जीवन में शांति आएगी, समृद्धि आएगी, ज्ञान आएगा, धर्म का कुछ कुछ अर्थ समझ में आएगा। परंतु जब सतोगुण का प्रभाव कम हो जाएगा और रजो और तमोगुण का प्रभाव आ जाएगा, तो अज्ञानता के कारण लोग बहुत दुखी हो जाएंगे, उनके लिए ये संसार परेशानी का कारण हो जाएगा और असह्य हो जाएगा। इसलिए दो लोग संसार में दुखी हैं। परंतु भगवान इन सारे गुणों से ऊपर है, इसलिए भगवान को निर्गुण कहते हैं। इस निर्गुण शब्द का अर्थ है भगवान प्रकृति के गुणों से परे है, परंतु भगवान के अंदर आध्यात्मिक गुण तो अनंत है। भगवान के गुणों को अनंत शेष अनादि काल से गा रहा है, अभी तक पूरे नहीं कर पा रहा है। तो भगवान के गुण तो अनंत है, लेकिन वो गुण भौतिक नहीं है, वो है आध्यात्मिक गुण। और निर का मतलब बिना गुण के, तो लेकिन असल में भगवान में दिव्य गुण है। यह है सकारात्मक भगवान को समझना, नकारात्मक समझना गुणों से परे है, भौतिक गुणों से परे है। सकारात्मक समझना, पॉजिटिवली समझना कि उनमें बहुत दिव्य गुण है। परंतु ये जो भगवान के दिव्य गुण है, ये जो वेद वाले जो वेद का मार्ग अपनाते हैं, उनको इनका पता नहीं लगता है, क्योंकि वो वेद है ही तीनों गुणों के अंतर्गत। ये भगवत गीता का श्लोक है, वेदा विश्या त्रिगुणा निर्द्वंद्वो भर निर्त निस्त्रिगुणो भव अर्जुन। ये वेदों का जो शिक्षा है वो तीनों गुणों के अंतर्गत है, परंतु अगर भगवान को जानना है तो तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी लोग तो लिखते हैं, क्योंकि भगवान के दिव्य गुणों का तो प्रायः अनुभूति बड़े बड़े वेदों के अध्ययन करने वालों को छोड़ो, ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं को भी नहीं होती। इस बात को समझने के लिए भागवत में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के संग में जमुना के पुलीन पे भोजन करते हुए 4.5 साल के कृष्ण को, 4 साल के कृष्ण को देख के आश्चर्यचकित हो गए उसके इस सखा भाव के मधुर रस का, समझ में नहीं आया। भगवान शंकर बाणासुर के युद्ध में श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे गए, उनके दिव्य गुणों के विषय में ये सब चीजें, इतने बड़े देवता भी विमोहित हो सकते हैं तो सामान्य लोग कैसे समझ सकते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि भगवान को समझने के लिए भगवान का शरण लेना ही एकमात्र रास्ता है, और शरणागति भक्ति का शुभ आरंभ है। प्रेम भक्ति की प्रथम अवस्था शरणागति है। अर्जुन ने जब भगवान को कहा, त्वाम परपनाम, मैं आपके शरण में हूं, अब मुझे शिक्षा दीजिए, ये बड़ी अच्छी बात है, शिक्षा दीजिए, परंतु शरण नहीं है तो शिक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। पहले शरण फिर शिक्षा, ये है वेद का अवरोह पंथ। अवरोह पंथ का मतलब ऊपर से नीचे आने वाला। और हमारी दुनिया में वेद पढ़ने वाले हों या संसार की शिक्षा वाले हैं, ये है आरोह पंथ, नीचे से ऊपर जाने वाला। तो भगवत भक्ति का मार्ग जो है ऊपर से नीचे आने वाला है, ये कृपा के ऊपर निर्भर है, और कृपा के लिए शरणागति चाहिए, सबमिसिवनेस चाहिए। अर्जुन भी पहले कहते, सादी माँ मुझे शिक्षा दो, लेकिन पर प्रणाम, मैं आपके शरण में हूं इसलिए मुझे शिक्षा दो। और गुरु के पास जाते हैं तो पहले कहते हैं प्रणिपाते हैं, फिर कहते हैं परिप्रश्नेन, पहले शरण लेते हैं फिर जिज्ञासा करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, भक्ति के द्वारा ही भगवान के दिव्य गुणों की अनुभूति हो सकती है। यही भगवत गीता में कहा गया है कि तीनों गुणों से ऊपर उठोगे तब भगवान के विषय में कुछ भगवान के दिव्य गुणों की कुछ अनुभूति हो सकती है, तभी हमारी शुद्ध सरल आध्यात्मिक जीवन शुरू हो सकता है। अब जो अग्निदेव है, जो आहुतियां लेता है, यज्ञ में मुख्य अग्नि है, वो अग्निदेव प्रार्थना कर रहे हैं। अग्निर्वाचा, अग्निदेव हाथ जोड़ के खड़ा है, यत तेजसा अहम् सुसमिद्धा तेजा हव्यम वहे स्वध्रवा स्वध्रवा आजसिक्तम तम यज्ञियम पंचविधम च पंचभिः स्वष्टिम यज्ञ यजुर्भिः प्रणत्वास्मि यज्ञम। जो अंतिम शब्द है यज्ञम, ये भगवान का नाम है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के सहस्र नाम है, हजारों नाम है, उसमें एक नाम है यज्ञ। प्रणत्वास्मि, हम आपका शरण लेते हैं। अग्नि कहती है हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपका शरण लेते हैं। ये प्रणत्व शब्द जो है प्रणाम है, शरणागति का सूचक है। क्यों शरण लेते हैं अग्नि? यतेजसा अहम्, जो मेरे अंदर तेज है, जो मेरे अंदर प्रकाश है। समिद्ध तेजा, जब ये समिद्धा डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, तो उसके अंदर से जो ज्वाला निकलती है ये आपकी कृपा से निकलती है भगवान। यतेजसा अहम्, जो मेरा तेज है, स समिधा तेजा, जो अग्नि डालने से ये प्रज्वलित होता है। हव्याम वहे, और जो इसके अंदर स्वाहा करते हैं, स्वाध्रव, जो जो यज्ञ करने के लिए आज सिक्तम, घी में डूबा हुआ ये जो डालते हैं, जब तिल आदि स्वाहा करते हैं, ये भी आप ही इसको ग्रहण करते हैं। तम यज्ञियम, इनके द्वारा आप ही पूजनीय है। यज्ञियम का मतलब पूजनीय है। तो वेदों में कैसे पूजते हैं? बोला पंचविधम, वेदों में पंच प्रकार के मंत्र हैं, उनके द्वारा, यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा पूजे जाते हैं। च पंच भी ही, और पंच प्रकार की सामग्री चाहिए जिसके द्वारा यज्ञ होता है। बोला कहाँ लिखा है? स्वष्टिम यजुभि, ये यजुर्वेद में विशेष रूप से स्वष्टिम, जिसके द्वारा आपकी इष्ट, जो 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 आपको इष्ट मानता है वो आपकी इससे पूजा करता है। तो अग्निदेव प्रार्थना करते हैं, हे मेरे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका शरण लेते हैं आपकी ही कृपा से। अग्नि कहती है मैं प्रज्वलित होता हूँ, जब कोई सुविधा डालते हैं तो मुझसे जो प्रकाश निकलता है, तेज निकलता है, मैं जो प्रज्वलित होते हैं, ये आपकी कृपा है। और मैं ये जो घी से डूबी हुई आहुति ग्रहण करता हूँ इस यज्ञ में, वो भी आपकी कृपा के लिए, वो आपके लिए है। और पांच प्रकार के यजुर्वेद में जो यज्ञ हैं वो भी आपकी शक्तियाँ हैं, और जिन पांच मंत्रों से पूजा की जाती है वो भी आपका स्वरूप है। हे यज्ञ पुरुष, आप ही साक्षात यज्ञ पुरुष हो। तो अग्नि कहती है मैं तो आपका सेवक हूँ, आप मेरे द्वारा आप ये सारा यज्ञ कराते हैं। तो अब इसमें चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अग्निदेव की प्रार्थना है कि मैं ये यज्ञ में आहुति, तो अग्निदेव कहते हैं मैं लेता हूं और जिसकी होती है उसको पहुंचाता हूं, लेकिन आपको मैं ठीक तरह से नहीं जानता। और ये किसके लिए अग्निदेव कह रहा है? ये अग्निदेव कह रहा है जो यज्ञ कराने वाले हैं। कौन है यज्ञ कराने वाले? जो पुरोहित हैं, समझते हैं कि हम यज्ञ करते हैं, उनके कहते हैं, ये कहते यज्ञ करते हैं, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि आप कौन हो जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। और फिर आप ही तो यज्ञ का फल देने वाले हो, यज्ञियम, यज्ञ के द्वारा जो फल मिलता है वो आप देने वाले हो, क्योंकि पूजा तो यज्ञ में आपकी होती है। ऐत्रिय, ऐत्रिय ये वेदों का एक शतपथ ब्राह्मण का अंग है ऐत्रिय, उसमें पांच प्रकार के यज्ञ करने की विधि बताई गई है। एक को अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं, एक को दर्श पूर्ण मास यज्ञ कहते हैं, एक को चतुर्मास यज्ञ कहते हैं, एक को पशु बलि जिसमें देते हैं, और एक सोम, सोम रस जिस यज्ञ में बनता है उसकी वो अर्पण करते हैं। और आपको पांच मंत्रों से यजुर्वेद के पढ़ा जाता है, श्रुति में इन पंच मंत्रों का नाम है। आश्रावयेति चतुरक्षरम् अस्तुः श्रौता श्रौत श्रौषण श्रोष इति चतुरः अक्षरम् यजेत द्वाभ्याम् ये यजामहे इति पञ्चक्षरम् द्वाक्षरहो वष्टाका अवष्टकार। चार चार अक्षरों का जो मंत्र है उसको कहते हैं आश्रावय। आश्रावय मंत्र है चार अक्षर का। ये चार अक्षर का मंत्र आश्रावय है। अस्तो श्रौष्ट ये चार चार अक्षर के मंत्र है। दो अक्षर का मंत्र है यज। पांच अक्षर का मंत्र है ये यजा महे। दो अक्षर का मंत्र है वशट। स्मृति स्मृति ये है वेद में। अब स्मृति का मतलब है पुराण। उसमें भी चतुर्भिः चतुर्भिः च द्वाभ्याम पञ्चभिः एव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम समे विष्णुः प्रसीदतो। भगवान विष्णु हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। चार अक्षर वाला मंत्र, चार अक्षर वाला मंत्र, दो अक्षर वाला मंत्र, पांच अक्षर वाला मंत्र, दो अक्षर वाला मंत्र। तो ऐसे यज्ञ में ये ऐसे यज्ञ होते हैं। तो अग्नि कहती है ये सब तो वेद की विधि है, इससे ये यज्ञ करते हैं लेकिन ये आपको नहीं जानते। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य है भगवान विष्णु के सहस्र नाम जो है उनमें से एक नाम यज्ञ है। ये पहले श्लोक आ गया था। अब इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता में भगवान विष्णु को यज्ञ कहा गया है और सारे कर्म भगवान विष्णु के लिए करने चाहिए, उसकी प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो कर्मणो अन्यथा कर्म बंधनः। अगर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे तो कर्म हमको बंधन में डालेंगे। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं हरेक को यज्ञ करना चाहिए जैसे वेदों में वर्णित है, जैसे उपनिषदों में ये पांच यज्ञ लिखे हैं जो अभी बताए थे आपको। पांच यज्ञों को प्रभुपाद ने शब्द लिखा, अग्नि है, वेदी है और शुभ चंद्रमा और चार मंथ चतुर्मास्य है, पशु जिसकी बलि देते हैं और सोम रस है। ये सब चीजें आवश्यक होती हैं यज्ञ के लिए। और फिर मंत्र हैं वेदों में जैसे अभी हमने पढ़े आश्रावयेति चतुरक्षरम् अस्तुः। ये प्रभुपाद ने वही सब मंत्रों का वर्णन किया है जो शतपथ ब्राह्मण में आयत्री उपनिषद आदि में है और श्रुति में भी इन मंत्रों का वर्णन है। तो इससे फायदा क्या हुआ? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। ये मंत्र काहे के लिए है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। क्यों भगवान को प्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है कि संसार में भोगों में लिप्त जीव बंधन से मुक्त भगवान का शरण लेकर ही हो सकता है, भगवान की कृपा और प्रसन्नता से ही मुक्त हो सकता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं चार वर्ण है, चार आश्रम है, इन सब के लिए समाज में कुछ वेद ने नियम बनाए हैं और उन नियमों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और भगवान विष्णु प्रसन्न हो गया तो यज्ञ हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हम जो कृष्ण भावना के भक्त हैं वो केवल काम ही सुबह से शाम तक हमारा जीवन ही भगवान की सेवा के लिए है और कृष्ण की सेवा के लिए है। तो कृष्ण तो विष्णु का ही उद्गम स्थान है, विष्णु तो उनका एक अंश है। तो फिर हम रोज जो पूजा करते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, ये हमारा रोज का यज्ञ है। भक्त तो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, भगवान की पूजा करो और भगवान को भोग लगा के प्रसाद वितरण करो, ये यज्ञ हो गया। यज्ञ हो यज्ञ वो है जिसमें प्रसाद वितरण हो, बिना प्रसाद के यज्ञ पूरा नहीं है। प्रभुपाद ये दो बातें लिख रहे हैं। तो वो सबसे उत्तम यज्ञ करने वाला हो गया, भगवान की पूजा करे, प्रसाद वितरण करे, बस भगवान को भोग लगाए, ये बड़ा यज्ञ हो गया। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कली काल में ये सब यज्ञ करना बहुत मुश्किल है, इसलिए भागवत में एक और यज्ञ का वर्णन है, संकीर्तन यज्ञ 11वें स्कंद में। इन सारे यज्ञों के लिए जो सामग्री चाहिए वो मिलना मुश्किल है। यज्ञ कराने के लिए ऐसा पंडित पुरोहित मंत्रों को उच्चारण करने वाला मिलना मुश्किल है, परंतु कली काल में जो ये यज्ञ है संकीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो यज्ञ है ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस यज्ञ को धरती के ऊपर लाए हैं और इसका उल्लेख 11वें स्कंद में है। तो जैसे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होता है स्वाहा करने वाला, ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए हरे कृष्ण मंत्र से यज्ञ होता है। जिस यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हुए दक्ष के वहां, वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कली काल के अंदर संकीर्तन यज्ञ में प्रकट होते हैं, उनकी पूजा ही हरे कृष्ण मंत्र से होती है। तो ये यज्ञ का है। अब देवता जो उस यज्ञ में अपना भाग लेने के लिए आए हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं। देवा उचुहो, सारे देवा कहते हैं, पुरा कल्पा पाए स्वकृतम उदरी कृत विकृतम त्वम एवाद्यस्तस्मिन् शलीले उर्गेन्द्रा अधिशयने पुमान शेषः सिद्धहृदय विमर्शिताध्या अध्यात्म पद्मिः स एव अद्य अक्षणो यः पति चरसि वृत्याम अवसी नः। मुख्य शब्द है वृत्याम अवसी न, हम आपके सेवक हैं। सारे देवता कहते हैं हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं, और पथि चरसी, हम आपके रास्ते में चलते हैं। एवाक्षणोर यह पथि चरसी, हम आपके सेवक हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अब भगवान की महिमा क्या गा रहे हैं, पुरा कल्पा पय स्वकृतम। जब कल्प समाप्त होता है, ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त होता है, ब्रह्मा जी की रात होती है, तब होती है प्रलय। उस समय स्वकृतम, वो प्रलय जब होती है ब्रह्मा जी के सोने से के समय, तब आप उदरी कृतम, तब आप सारे संसार को अपने पेट में समा लेते हैं, विकृतम उसको अपने अंदर समा लेते हैं। तो हम एवाद्यस्मिन, उस वक्त आप क्या करते हैं, शलीले आप सागर के अंदर, गर्भ सागर के अंदर, उर्गेन्द्रा या उर्गेन्द्र कहते हैं शेष नाग को, उसके ऊपर शयन सो जाते हैं। प्रलय के समय सारे संसार को अपने अंदर समाकर, ये प्रलय कौन सी है, ब्रह्मा जी के रात वाली प्रलय, तीनों लोकों को मतलब स्वर्ग लोक तक, उससे ऊपर के नहीं, स्वर्ग से नीचे सब लोगों को अपने पेट में समाकर और शयन करते हैं आप शैया के ऊपर, शेष शैया के ऊपर गर्भ सागर में। उस समय पुमान शेषे सिद्धि, जो बचते हैं, बचते हैं का मतलब जो प्रलय के समय जो जिनका विलीन नहीं होता है, जो बच जाते हैं, बचते कौन थे, जो सनकादि कुमार जो ऊपर के लोक में रहते हैं, स्वर्ग से ऊपर रहते हैं, वो बच जाते हैं। वो कैसे हैं, वो सिद्ध है। पुमान शेषे सिद्धि, वो जो सिद्ध है हृदय, वो अपने हृदय में विमर्श अध्यात्म पदवी ही वो ध्यान करते, आपका स्मरण करते। बाकी सब प्रलय हो गई, परंतु जो वो सिद्ध लोग हैं सनकादि ऋषि ऊपर के लोकों में रहने वाले, वो आपका ध्यान करते और अद्य, परंतु आज अक्षण आप हमारे आज आंखों के सामने प्रकट हो गए, चरसी पथी और चल रहे हो, हम तो देखते नहीं, हम आपके सेवक हैं, अवश्य आप हमारी रक्षा करो। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, देवता कह रहे हैं, भगवान पहले जब प्रलय हुई थी तो सारी भौतिक प्रकृति को आपने अपने उदर में समा लिया था, परंतु ऊपर के लोगों के सिद्ध लोक जो हैं, मुक्त लोक हैं सनक आदि, वो आपका ध्यान कर रहे थे, आपका चिंतन कर रहे थे, इसलिए आप आदि पुरुष हैं। और आप प्रलय के सागर में शेष के ऊपर शयन करते हैं। आज हम आपको आंखों के सामने देख रहे हैं क्योंकि हम आपके दास हैं, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी का यहां भाव ये है। और चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपने अपने उदर में सारी सृष्टि को समा लिया और विकृत करके समा लिया, उसको जो बाहर थी उसको अंदर करके विकृत कर लिया, ट्रांसफॉर्म। आप ही ज्ञान का मार्ग हैं, अध्यात्म पदवी जिसके ऊपर सनकादि ऋषि ध्यान करते हैं। आप अपने सेवकों के रक्षक हो, पालक हो, हम आपके सेवक हैं। आज हमने आपका दर्शन किया है। इसमें दो बातें हैं, पहली बात यह है कि आप केवल अपने सेवकों के द्वारा ही देखे जा सकते हो, आप दर्शन देते हो अपने सेवकों को जिनकी आप रक्षा करते हो, उन्हीं के द्वारा आप जाने जा सकते हो और किसी के द्वारा नहीं। तो ये किसकी, और ये देवा देवता किसको कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यज्ञ करने वाले और ज्ञानियों को जो वहां बैठे। श्री प्रभुपाद जी पहले हमको ये बता रहे हैं कि ये जो प्रलय है ये ब्रह्मा जी की रात की है, तब स्वर्ग लोक से नीचे के लोग तो जल निगम हो जाते हैं, भगवान के उदर में चले जाते हैं, परंतु मार लोक, जन लोक, तप लोक, इनमें प्रलय नहीं होती है, वहां के जो सिद्ध पुरुष हैं वो रहते हैं। परंतु इस श्लोक में भगवान को सृष्टिकर्ता कहा गया है और सारी शक्तियां प्रलय के समय भगवान के उदर में समा जाती हैं, पेट में समा जाती हैं। इस श्लोक में जो भृत्य शब्द कहा है देवताओं ने, प्रभुपाद जी कहते हैं ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और जो सेवक होता है उसकी आप सुरक्षा और रक्षा करते। अब प्रभुपाद जी कहते हैं देवता तो भगवान की रक्षा के ऊपर निर्भर है, परंतु संसार के लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं फिर उनको बुद्धिमान कैसे माना जाए? जो स्वयं देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर उन देवताओं की पूजा कुछ संसारी सुख के लिए करना कौन सी बुद्धिमती है? अगर कुछ मांगना ही है तो भगवान से मांग लो, क्या भगवान नहीं देगा क्या? वैसे देवताओं के द्वारा भगवान ही तो दिलाता है। इसलिए भगवत गीता में देवताओं के पूजा करने वाले को, कोई कौन सी पूजा करने वाले को? सकाम कर्मों की पूजा करने वाले को, तुच्छ संसार के पदार्थ प्राप्त करने वाले की पूजा करने वाले को अल्प मेध सा कहा गया है। अल्प का मतलब थोड़ी, मेधा मतलब बुद्धि। और देवता यहां कह रहे हैं हम आपके सेवक हैं। तो जो भगवान के सेवक होते हैं उनको कोई संसार के भोग की चीज पहले तो मांगने की इच्छा नहीं होती, और उनको कोई तर्क वितर्क वाले ज्ञान में समय व्यर्थ गंवाने की का समय ही नहीं होता, अवकाश ही नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान की प्रेममय सेवा में इतने तलीन होते हैं, इतने संतुष्ट होते हैं और इतने मगन रहते हैं। तो उनको तो इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है केवल मेरा शरण ले लो, मैं आपका सुरक्षा दूंगा, सब पापों से बचाऊंगा, सर्वधर्मान परित्रमामि एकम अहम त्वम सर्व मोक्षिषामि मा शुच। प्रभुपाद जी एक बात बड़ी अच्छी लिखते हैं कि भौतिक जगत ऐसा ही बनाया गया है कि सबके द्वारा इस संसार में पाप होता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं पाप नहीं करता। एक महात्मा एक पत्थर के ऊपर बैठे थे और दूसरे महात्मा को कह रहे थे देखो मैं पाप से बचा हुआ हूं, उठता ही नहीं हूं, यहां से यहीं बैठा होता हूं। उसने कहा जरा पत्थर से उठो, तो पत्थर के नीचे जीव था, वो उसके नीचे दब रहा था और मर रहा था। तो हम नहीं जानते हुए भी ये संसार बना हुआ ऐसे है कि सबसे पाप होता है। ये संसार में पाप सबके द्वारा जना जाने अनजाने में होता ही है, पहली बात तो ये। तो पाप से बचेंगे कैसे? जब भगवान का शरण लेंगे। पाप तो होंगे पर भगवान के शरण लेने से भगवान पापों हमें हमारे पापों की हमको क्षमा कर देंगे और पुनः पाप करने से बचा लेंगे। प्रभुपाद ने सीधा लिखा है कि ऐसे जो भगवान के शरणागत होते हैं उनकी भगवान साक्षात रक्षा करते हैं। किससे? पाप करने से। उनको पाप में प्रेरित होने ही नहीं देते हैं। देखिए चार ये नियम शिला प्रभुपाद जी ने भागवत से निकाल के पाश्चात्य देश के लोगों के सामने रखे कि नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं करना, अवैतिक पुरुष स्त्री का संबंध नहीं हो, ये तो पाप। तो ये चार पाप, यही तो चार कलयुग को परीक्षित महाराज ने रहने के स्थान दिए थे। और ये धर्म के चार जो स्तंभ है, तपस्या, दया, पवित्रता, दया, तपस्या, पवित्रता और सत्य, ये चार धर्म के स्तंभ है, खंभे हैं जिसके ऊपर धर्म खड़ा है। और ये चार पाप कर्म है जो इस धर्म को विध्वंस करते हैं। सत्य जाता है जुआ करने से, तप जाता है नशा करने से, दया जाती है मांसाहार करने से, और विचार करने से पवित्रता जाती है। इन पाप से, इस पाप में तो सारा संसार लिप्त है। और शरणागति गुरु के द्वारा भगवान की जब की जाती है तो पहले तो ये चार नियम बताए जाते हैं और तब साक्षात भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इसका प्रमाण हमने आंखों से देखा कि लोग जो ये तुच्छ चीजें छोड़ने के लिए बड़ा प्रयास करके थक चुके थे, भक्तों के संग में भगवान के नाम को जपना शुरू किया, प्रत्येक जीवन के अंदर अपने आप आंखों के सामने ये सब चीजें छूट गई, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। तो भगवान रक्षा करते हैं ना पाप से बचाने की। व्यक्तिगत लॉर्ड हैज डायरेक्ट प्रोटेक्शन, हाँ लॉर्ड हैज डायरेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम दोज हु सर्व द लॉर्ड, बट दोज हु सरेंडर एंड डेडिकेट द लाइफ फॉर सर्विस ऑफ लॉर्ड हैज डायरेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉर्ड। उसको फिर पाप के कर्म से कोई संकट होगा, दुख होगा, उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो जाने अनजाने में फिर पाप की तरफ प्रेरित ही नहीं होगा। अब गंधर्व बोल रहे हैं जो गाते हैं, अगंधर्वाऊचु हो अंशा अंशास्ते देव मरिच्याद्य एते ब्रह्मिंद्राद्य देव गणा रुद्रा पुरुगा खीरा भांडम विश्वमिदं यस्य विभोमन तस्मै नित्यं महा तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। हे नाथ नमस्ते करवाम, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान क्यों इतने सारे यहां देवता का हो बैठे, उन सबको करो ना, अंशा अंशते, ये तो आपके अंशों के अंश हैं, अंशा अंशते, ये आपके अंशों के अंश है। बोलो कौन से, किसकी बात कर रहे हो? ये पूछिए भगवान। मरीची आदि है, ये ऋषि जो मरीची आदि है, कोई बात नहीं, फिर देवता ये तो ऋषि है। ब्रह्मा इंद्रा, ब्रह्मा है इंद्र आदि ये जितने भी देवगण हैं, और फिर रुद्र और उर्गाह, रुद्र रुद्र उर्गाह जो इन सब के महान महादेव है, ये भी तो आपका अंशों के अंश है। तो फिर मैंने इस सबको पैदा क्यों किया? कीड़ा भांडम, ये आपकी कीड़ा, कीड़ा कहते हैं खेल को, कीड़ा कहते हैं खेलने को, जहां खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है, और भांडम कहते हैं बर्तन को। ये पूरा विश्व है जिसके अंदर ये देवता संचालन चला रहे हैं, ये एक आपका खेल का मैदान है, ये खेल का भांड है। यस्य विभूमन, हे विभूमन, विभूमन का मतलब विशेष महान आप हैं, तस्मै नित्यम नाथ, इसलिए नित्य भगवान हम आपके चरणों में आपका ही गुणगान करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। यहां हम यज्ञ में आए थे, दक्ष के यज्ञ में हम महिमा गा रहे थे दक्ष की, लेकिन असल में इसकी नहीं, गा आपकी रहे थे, क्योंकि गंधर्वों का काम है गाना और नृत्य करना। गंधर्व कह रहे हैं, हे भगवान, ये देवता शंकर जी से लेके ब्रह्मा इंद्र मरीचि आदि ऋषि, ये सब आपके अंशों के अंश हैं, ये आपसे उत्पन्न है, आप विभूमन हैं, आप महान हैं, ये सारी सृष्टि आपका एक क्रीड़ा का, आपके एक खेल का मैदान है, खेल का खिलौना है, बर्तन है। हम तो निरंतर परम पुरुष भगवान आपको ही अपना नाथ मानते हैं और आपके ही चरणों में प्रणाम करते हैं। शक्तिशाली सारे बड़े बड़े शक्तिशाली ऋषि मरीचि ब्रह्मा देवता और शंकर जी, ये तो आपके अंशों के अंश ही हैं। ये सारा संसार एक एक खेल का मैदान है, एक खिलौना है आपके खेल के लिए, हम तो नित्य आपके शरण में हैं। कहते हम आपको प्रणाम करते हैं, जब हम इस सभा में आते हैं तो हम दक्ष की महिमा गाते हैं, कहते हैं वाह वाह महान है इस सभा का सभापति यज्ञ दक्ष है, क्योंकि हम गंधर्व में हमको गाना है, परंतु वास्तव में आपका ही हम पूजन करते हैं, इनमें से कोई बड़ा नहीं। गंधर्व कभी कभी गलतियां करते हैं, भगवान की महिमा न गाकर संसार की महिमा गाते हैं, तो नारद जी अपनी पूर्व जन्म की कथा में बताते हैं, मैं उपभ्रंश नाम का गंधर्व था और मैं सुंदर स्त्रियों के साथ गान करने के लिए भगवान का गुण न गाकर संसार के भोग की गाथा गाने लगा, मेरे को गंधर्व के पद से नीचे गिरना पड़ा और मैं दुर्मल गोप के घर में कन्या कुबज में दासी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। यह मेरा दूसरा जन्म है, परंतु इस जन्म में भी बिना पढ़े लिखे के भक्तों के संग से उनके उचिष्ट प्रसाद और अनुमति और उनके कथा श्रवण से मेरे अंदर सारा दिव्य ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो गया। कहीं एक किताब का शब्द नहीं पढ़ा, पुस्तक तो पढ़ा नहीं, स्कूल तो गया नहीं, परंतु इसी जन्म में भगवान का दर्शन कर लिया और ये शरीर छूटते ही मुझे दिव्य नारद का देह मिला और वीणा भगवान ने दी और उसका गुण गाना। सो गांधर्व कहते हैं, हम सभा में जाते हैं उसी सभापति का आप गुणगान करते हैं, परंतु करते हैं आपका, क्योंकि ये सब आपके अंशों के अंश है ना। ये ब्रह्मा आदि देवताओं की ओर देख के कह रहे हैं कि ये समझते हैं कि हम पूजन हैं, लेकिन ये सब आपके ही अंश हैं। प्रभुपाद जी सीधा ब्रह्मा संहिता से लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर है परम कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण है, ईश्वर बहुत है पर परम ईश्वर कोई नहीं। शंकर जी भी ईश्वर है, ब्रह्मा जी ईश्वर है, चंद्र ईश्वर है, इंद्र ईश्वर है, परंतु कृष्ण परम ईश्वर है, ईश्वर है परम कृष्ण। जो जो जिस जिस लोक के स्वामी है वो वहां के ईश्वर है, इस दुनिया के भी बहुत सारे ईश्वर है, आपके घर के आप भी ईश्वर हो, स्वामी है, ईश्वर का मतलब कंट्रोलर स्वामी, परंतु एक भगवान एक स्वामी है जो सबके स्वामी है। प्रभुपाद जी फिर कहते हैं ये सब देवता कैसे हैं, इनसे भी नीचे जो देव जो लोक हैं उनके अंदर कोई, जैसे हमारा दुनिया है इसके अंदर जितने मुल्क हैं, ये समझा जाए जितने देश हैं, इन देशों में कितने ही लोग, अब पहले लिखते हैं कोई प्रेसिडेंट है, कोई मंत्री है, और नीचे आते हैं तो कोई चेयरमैन है म्युनिसिपल का, और कोई बड़े से बड़ा राजा है, परंतु ये सारे जो है ये अपने आप को ईश्वर मानते हैं, अपने आप को उस जगह का मालिक मानते हैं, लेकिन ये मूर्खता है अगर ये आपको भगवान अपने आप, ये भगवान तो नहीं है, परंतु ये भौतिक पद के कारण अहंकार में भर जाते हैं, पफटप हो जाते हैं, पद इनको पफटप कर देता है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु, परंतु जो विष्णु है वो भी भगवान का एक विस्तार है, श्री कृष्ण का एक विस्तार है। इसलिए यहां शब्द है अंश अंश, अंशों का अंश है। ऐसे श्लोक चेतना चरितमृत में मिलते हैं जिसमें कहा गया है कि सारे ही भगवान के अंश कितने हैं, बोले दो प्रकार के, एक तो स्वांश है विष्णु अंश है, और दूसरे विभिन्न अंश है वो जीव है, परंतु ये सब हैं भगवान के अंश। और ये कहकर प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए चेतना चरितमृत का ये श्लोक एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, असल में स्वामी एक है बाकी सब सेवक है। अरे ऐसे कैसे कह रहे हो, ये भी तो सारे पूजने हैं ना। बोला सबसे बड़ा जिसके अंदर से सारे विष्णु का उद्गम होता है, विष्णु प्रकट होता है, वो बलराम जी जो भगवान से अभिन्न है, वो भी तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो है ही सेवा का स्वरूप, वो सेवा का ही स्वरूप है। ये भगवान का वैभव प्रकाश है बलराम, प्रथम वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश होता है, प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश, श्री कृष्ण है आदि पुरुष, उसका प्रभाव प्रकाश होता है जिसमें जितने रूप बनते हैं वो बिल्कुल कृष्ण जैसे होते हैं। प्रभाव प्रकाश में सब उन जैसे होते हैं, उनका भाव भी ऐसा होता है, विचार भी ऐसा होता है। उसका उदाहरण है रासलीला में जितनी गोपियां उतने कृष्ण, सब कृष्ण एक जैसे श्याम सुंदर, सबके वस्त्र आभूषण और विचार और पद न्यास और नृत्य सब एक जैसा। फिर कोई कहे कि इतने सारे कृष्ण के ये सब प्रभाव प्रकाश है, इसमें आदि पुरुष कौन है? तो बहुत सरल समझना है, जो राधा के संग नृत्य कर रहा है वो आदि कृष्ण है, जो अन्य गोपियों के साथ नृत्य कर रहा है वो प्रभाव प्रकाश है, लेकिन है सब एक जैसे। श्री कृष्ण का जो वैभव प्रकाश है वो है, उसका रंग भी कृष्ण जैसा नहीं होता है और भाव भी कृष्ण जैसा नहीं होता। प्रभाव प्रकाश में भगवान सेव है, सब उसकी सेवा करते हैं, वो स्वामी है, वो गोपीनाथ है। परंतु वैभव प्रकाश जब होगा उसका रंग भी गोरा है, कैसा है? कृष्ण का रंग तो है चतुर्मास के बादल जैसा, बरसात के बादल जैसा, और वैभव प्रकाश बलराम जी का रंग है सर्द के बादल जैसा, सर्द ऋतु का बादल होता है सफेद सफेद, दूध के फेन जैसा। कृष्ण का भाव है स्वामित्व, सेवा सेविय भगवान, और बलराम जी भी उसी कृष्ण है, वही कृष्ण है, परंतु सेवक भगवान है, सेवा के लिए है। अब नित्यानंद त्रयोदशी आने वाली है, ये तत्व है असल में बलराम जी का, वो कैसे सेवा करते हैं? सारे रसों में सेवा करते हैं, ब्रज में सारे रसों में सेवा करते हैं, शांत रस में तो पूरा ब्रज धाम बन जाते हैं, दास रस में कृष्ण के चरण थक जाता है तो चरण दबाते हैं, सखा रस में तो साथ में खेलते हैं, और जब नंद यशोदा नहीं होती है तो वात्सल्य रस में तो उनका संरक्षण करते हैं, बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, और माधुर्य रस में तो राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी के भाव में सब रसों में। ये जो बलराम जी का स्वरूप है सेवा का, ये सब रसों में सेवा करते हैं। इसको कहते हैं बहुत अच्छा शब्द है संस्कृत, सब भावों में सेवा करते हैं। और यही बलराम जी यहां है, रोहिणी नंदन बलराम। मथुरा और द्वारका जब कृष्ण के साथ जाते हैं तब इनका नाम हो जाता है मूल संकर्षण, ये मथुरा बन जाते हैं, द्वारका बन जाते हैं, वहां सारी सेवा की सामग्री बन जाते हैं। और ये ही वैकुंठ में जब जाते हैं तो महासंकर्षण, ये मूल संकर्षण से महासंकर्षण, उस महासंकर्षण से ही कारण दक्षाय विष्णु प्रकट होता है। तो महासंकर्षण वैकुंठ में सारी सेवा की सामग्री बनाते हैं, तो ये सारे ही सारे सेवा ही कर रहे हैं। तो सब सेवक कैसे हैं? ये सारे सेवक हैं, ये प्रभुपाद जी बात कह रहे हैं। जब भगवान का अपना वैभव प्रकाश ही सेवा करता है तो फिर हम जीवों को सेवा सिखाने कौन सिखाएगा? भगवान नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा? तो सेवा सिखाने के लिए भगवान ये अवतार लेते हैं। इसलिए जिनको भी संसार में जन्म मिला है उनको सबको सेवा करनी है, करते तो सबकी सेवा है परंतु भगवान की सेवा भूल गए हैं, बस यही एक गलती है। इसलिए गंधर्व यहां कह रहे हैं कि ये सारे देवता भी आपके अंश हैं, इनमें से कोई भी परम नहीं है, परमेश्वर नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की मानता भागवत के परिभाष सूत्र में है। भागवत का परिभाष सूत्र का मतलब एक श्लोक जिसके ऊपर सारा शास्त्र केंद्रित है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं 1:3:28 एते चांच कलह पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृद्यन्ति युगे युगे। ये जितने भी अवतार गिनाए हैं 24, ये भगवान कृष्ण के अंश है या अंशों के अंश है, परंतु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूजन्य है, उन एक की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाती है। जैसे जड़ पेड़ की जड़ में पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। एक और श्लोक पढ़ते हैं आज, कल की क्लास आपके बाद 2 घंटे की होने गई तो गले के ऊपर स्ट्रेन हो गई है, कथा चल रही है लेकिन बाद में दर्द होगा। विद्याधरा उचो, ये विद्याधर, ये गंधर्व विद्याधर, ये स्वर्ग के नीचे लोगों के हैं। वैसे विद्याधर का मतलब विद्या धारण करने वाले, इसका मतलब बड़े विद्वान। विद्याधर उचो त्वं मायारथम अभिपाद्य कलेवरस्मिन् कृत्वा मम अहम् इति दुर्मते उत्पत्थै स्वैहि क्षपितो अप्य असद्विष्यः लालसात्म मोहम् युष्मत् कथामृत निषेवक उत व्युदस्येत। इसमें मुख्य शब्द है मानव शरीर, त्वन भगवान आपके, त्वम माया आपकी माया के द्वारा, अर्थदम ये शरीर जो बनाया है माया का हमारा, परंतु बड़ा काम का है, ये बड़ा काम का है, ये नित्य नहीं है परंतु इससे बड़ा काम हो सकता है, भगवान को पाया जा सकता है। अभिपद्ये कलेवरम अस्मिन्, कलेवर कहते हैं शरीर को, इसमें माया क्या कर देती है? माया कृत्वा मम अहम, मैं मेरा, यह शरीर मैं और मेरे की बीमारी है। वेद में कहा है अहम ममेति इति विष, जो कहता है मैं हूं मेरा हूं वो विष पी रहा है। तो बोला अमृत क्या है? इदमना ममा, ये मेरा नहीं है, किसका है? भगवान का है। इसलिए वेद में जब यज्ञ किया जाता है ना, तब मंत्र पढ़ते हैं ना, इदम गोविंदाय स्वाहा इदम न ममा, इदम रुद्राय स्वाहा इदम न ममा, इदम इदम इंद्राय इंद्र इदम न ममा, इदम न मम जरूर पीछे का ना, मेरा नहीं है। तो ये जो ऐसे मैं मेरा कहते हैं, ये कैसे दुर्मति उत्पथई स्वई, इनकी मति दुर्मति हो गई है, दुष्ट मति हो गई है, उत्पथई रास्ते से भटक गए हैं, स्वई क्षपत तो अपने आप को गिरा दिया है। क्यों? अपि असद विषय लालसा, असद विषय लालसा, संसार के भोग के पदार्थों के पीछे भाग रहे, आत्म मोह हम पूरे रूप से अपने आप को भुला दे, बोलो कैसे बचेंगे। युष्मत कथा मृतन, अगर आपकी कथा सुने ना उत्त बुद्धोस्यते, एकदम मुक्त हो जाएंगे। केवल आपकी कथा ही इनको मुक्त कर सकती है, नहीं तो ये आपकी माया से मैं मेरा करते होते हुए विषयों के भोग के पीछे पागल दुर्मति हो गए हैं, पथ भ्रष्ट हो गए हैं। आपकी कथा ही इनको बचा सकती है। विद्याधर कह रहे हैं, हे भगवान, मानव जन्म कितना दुर्लभ है, इससे तो परम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, परंतु आपकी भौतिक प्रकृति के प्रभाव के कारण ये जीव बेचारा, मैं और मेरा इस शरीर को समझते हुए और शरीर में सुख भोग के लिए पागल हो जाता है और पथ भ्रष्ट हो जाता है, तुच्छ भोगों के पीछे समय व्यर्थ में गंवा देता है। परंतु अगर आपकी कथा और दिव्य लीलाओं का श्रवण करे, वो इतने शक्तिशाली हैं, केवल श्रवण मात्र से, कीर्तन मात्र से इन सब के मोह का नाश हो जाएगा और बंधन से ये मुक्त हो जाए। ये किसकी ओर, ये श्लोक किसको कह रहे हैं? विद्याधर ज्ञानियों को कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मानव शरीर अर्थ अर्थद है, ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं अपने सहपाठियों को, कहते हैं ये मानव शरीर अर्थद बहुत बड़ा लाभ वाला है, भले क्षण भंगर है थोड़े समय के लिए, लेकिन काम इससे बड़ा हो सकता है, परम सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। सब योनियों में मानव शरीर महान है, बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। बड़े भाग मानसतन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, देवताओं को भी मानव शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है। देवता भी इसकी गाथा गाते हैं कि कितना भाग्यशाली है ये, परंतु माया ने तुच्छ क्षणक सुखों के कारण मानव जन्म के मूल लक्ष्य को मलियामेट कर दिया, बुला दिया। हम तो असद के पीछे फांसे, असद का मतलब सदा रहने वाला नहीं है, उसके पीछे भाग रहे हैं। जिन चीजों को आप पकड़ना चाहते हैं वो किसी के हाथ आई नहीं, और जो चीज हमारे साथ है, जो कभी हमारा साथ छोड़ती नहीं है, उसको तो हम पूछते नहीं है। भगवान जो जिससे हम कभी अलग हुए नहीं है उसको याद करते नहीं है। दुनिया सारी जो है एक दिन हमसे अलग हो जाएगी, उसको ही पकड़ के बैठे हुए। संसार का मतलब है जो सरकता जाता है, जैसे नदी है। आप हरिद्वार में स्नान करें, एक डुबकी लगाए, दोबारा डुबकी लगाएंगे तो वही पानी नहीं, वो पानी चला गया, वो पानी उधर रुकेगा नहीं। ये संसार आज ऐसे जैसे चला जा रहा है, संसार का मतलब जो बह रहा है, इसमें किसी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हो क्या हाथ में आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। एक ही रास्ता इस मूर्खता के मुंह से छूटने का है, वह भगवान के दिव्य नाम गुण लीला का श्रवण कीर्तन करें। प्रभुपाद जी ने पूरा मंत्र लिखा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जो ये श्लोक है युष्मत कथा अमृत निशेवक, इसका मतलब है जो आपकी शक्तिशाली कथा का श्रवण करते हैं, हे भगवान। प्रभुपाद जी के ऐसे दो शास्त्र हैं, एक तो भगवान ने अपने मुख से कहा है भगवद गीता, जिसमें भगवान की शिक्षाएं हैं, और दूसरा है श्रीमद् भागवत जो अब हम पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान की महिमा गाई हुई है विशेष रूप से, और भगवान के भक्तों की महिमा है। ये दो शास्त्र विशेष अमृत हैं भक्तों के लिए, कथा इनकी अमृत है। ये जो कथा अमृत है, भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत है, और जो इन दोनों के प्रचार के कार्य में लगे हुए, इन दो पुस्तकों के प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से माया के सारे बंधनों से न केवल अपने को मुक्त करेंगे, जहां प्रचार कर रहे हैं उन सबको भी तार देंगे। माया हमको हमारी असली पहचान को मिटा देती है, केवल शरीर के ही स्तर के ऊपर काम करते हैं, परंतु ये शरीर तो बिजली के चमक की तरह किसी समय भी छूट सकता है। और फिर एक से दूसरे शरीर में जा रहे हैं, ये सब माया के कारण है। और माया का काम है आवरण आत्मिका शक्ति। आवरण का मतलब ढक, पर्दा। माया असल के ऊपर पर्दा डाल देती है, नकल को दिखा देती है, ये माया का काम है। बोला कैसे? बोला कोई विष्ठा में कीड़ा हो तो वो वहीं खुश होता है। इंद्र एक बार सूकर बन गया थोड़े शराब के कारण, एक सुअरी उसकी पत्नी हो गई, कुछ बच्चे हो गए और गटर में पड़ा था। ब्रह्मा ने कहा आप तो वापस ले आओ। कहा चलिए आप तो देवेंद्र है। बोलो नहीं नहीं यही मेरी पत्नी, यही मेरे बच्चे और यही गटर मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। तो ये माया ऐसी है, जहां जाता है वहीं अपने आप को सुखी बना देते हैं। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और इस माया के कारण मां के गर्भ में आना पड़ता है, मलमूत्र की थैलियों के बीच में लटकना पड़ता है। और मानव जन्म में अगर इससे अगर छूटने का मौका नहीं मौका मिला है, इसको हमने गंवा दिया, तो फिर मौका कहां मिलेगा फिर। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है आप जहां हो, जहां जिस आश्रम में उसमें रहो, जिस वर्ण में है उसमें रहो, स्थान स्थित है जहां हो वहां रहो। ऐसा नहीं है कि घर छोड़ने की जरूरत है, ऐसा नहीं है धंधा छोड़ने की जरूरत है, जहां हो वहां रहो। परंतु एक काम करो, कृष्ण कथा सुनो और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारी आज्ञा हो तारो ए देश। गुरु होए तारो ए देश, प्रभुपाद ने लिखा है आप सब गुरु बन जाओ और विश्वत पूरे का उद्धार कर लो, कृष्ण की कथा भगवद गीता सुनाओ, बस यही काम करना है। जहां जाओ यही काम करो, जिससे मिलो कृष्ण की कथा भगवद गीता सुनाओ। और प्रभुपाद कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस स्कान की स्थापना इसी काम के लिए की गई है। हम ये नहीं कहते हैं लोगों को, हम लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना धंधा छोड़ो या आप अपनी नौकरी छोड़ो या आप अपना घर छोड़ो। हम तो उनको इतना ही कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आके हरे कृष्ण महामंत्र जपो। और फिर दोबारा प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में पूरा मंत्र लिखा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो ऐसे केवल साधारण इस मंत्र को जपेगा तो उसके जीवन में नवा नया प्रकाश आ जाएगा और उसका जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। आप सबका जीवन धन्य और सफल हो जाए इस कामना के साथ यह कथा को विराम देते हैं। कल ब्राह्मण क्या बोलेंगे और क्या भगवान उत्तर देंगे इसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। लिखा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो ऐसे केवल साधारण इस मंत्र को जपेगा तो उसके जीवन में नवा नया प्रकाश आ जाएगा और उसका जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। आप सबका जीवन धन्य और सफल हो जाए इस कामना के साथ यह कथा को विराम देते हैं। कल ब्राह्मण क्या बोलेंगे और क्या भगवान उत्तर देंगे इसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय।